ओम शांति। कल कैसा लगा बाबा? माताओं को कैसा लगा? बिल्कुल आगे आओ माताओं, मेरी सुनो, आगे आ जाओ एकदम आगे। कैसा लगा बाबा? बहुत अच्छा लगा, ये थोड़ा ही, और बताओ कुछ। बहुत प्यारा था, बहने बताएं, ठीक है? इतना प्यारा था कि बता ही नहीं सकते। बहुत अच्छा, आगे आ जाओ माता जी, आगे आ जाओ, आगे बैठाओ, बैठाओ। बात आज माताओं का राज्य है। भाइयों को कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा तो है ही, वो तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। प्यार का सागर था, ठीक है ना? 18 जनवरी को अभी तो थोड़ी मुरली चली है, नहीं तो याद होगा जो सब सुनते आए हैं, लंबी चौड़ी मुरली इसी पर रहती थी कि आज सवेरे से ही सभी बच्चे प्यार के आंसुओं की माला बाप को पहना रहे थे। बहुत देर उसमें जाती थी। बाबा ने अचानक का पाठ फिर याद दिलाया, जरूर कोई सीन बाबा के सामने दिख रहा है, हैं सुरेश भाई? कुछ दिख रहा है बाबा को, हाँ अचानक कुछ होने जा रहा होगा, ये तो आप न्यूज ज्यादा सुनते हो, बताना। हाँ बाबा बताता नहीं ना बताएगा। और बहुत सुंदर एक बात थी जिस पे हम चर्चा करेंगे, क्या? और बताओ सबसे सुंदर बात, अर्जुन बताएगा। हाँ प्लान बनाओ, मंगुत्साह में रहो, इसकी लहर फैला दो। सत्यनारायण भाई आपको क्या अच्छा लगा? सदा शब्द को अंडरलाइन करो। और बाबा ने कहा, बाबा ने कहा और बाप का कहना और बच्चों का करना, अमृत वेले से रात तक। और बाबा का कहना क्या है? मुरली। देखो कितना सुंदर आ गया, साथ रहना माना श्रीमत पर साथ रहना, श्रीमत को फॉलो करना, श्रीमत पर चलना, ये नया अर्थ है ना। वैसे हम सभी सोचते थे कि भाई बाबा की याद में रहना, साथ उसको रखना, पर बाबा ने कल कह दिया उसकी आज्ञाओं पर चलना। बस उसने कहा और हम करें, ये लगन, ये उमंग, ये साथ रहना है। बाबा भी वतन में इंतजार कर रहा है, क्या करें हम जल्दी, साथ चलें और मुक्ति का गेट खोलें, ताकि बहुत आत्माएं मुक्ति का, बाबा ने कल ये शब्द बोल दिया, पाठ बजाए। वैसे वहां पाठ होता नहीं, पर उन आत्माओं का शांत में रहना ही पाठ है ना। किसी को हम कहते हैं ना, तुम चुप बैठे रहो, यही ठीक है बस। तो बाबा भी कहता है उनको चुप बैठा दिया जाए ऊपर शांत में, ये उनका पाठ हो जाएगा सदा। इस बात को अपनाने के लिए हम सभी अपने जीवन में आज से कोई भी एक धारणा अपना लें जिसको हम सदा रखेंगे। बोलो कौन सी अपनाएंगे? हम 5 धारणाएं निकालते हैं, उसमें से एक एक सब चुन लें, दो दो भी चुन सकते हैं। सदा, बोलो क्या करना है? सदा बेफिकर बादशाह रहना। आपने तो सबसे बड़ी बात बता दी, मैं इसको 5वां नंबर देना चाहता था, ठीक है ये 5वीं बात। पहली बात, सदा खुश रहना है, जो बाबा की एक बहुत आंतरिक दिल की इच्छा है बाप बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान को कैसा लगता होगा जब वो देखता होगा उसके बच्चे खुश नहीं रहते? आपके बच्चे खुश न रहते हों, आप उन्हें अच्छा भोजन खिलाएं, पैसा अच्छा दें, पढ़ने भेजें, फिर भी वो खुश न रहें तो कैसा लगेगा माताओं को? कुछ करें इनके लिए, ये कैसे खुश हो जाएं? सदा खुश रहें। दूसरी बात, सदा इंद्रप्रताप, सदा संतुष्ट रहेंगे। तीसरी बात, जो हम सदा करेंगे, और थोड़ी हल्की बातें कर लो, हाँ ऐसी पुरुषार्थ की बात भी कर लें कि हम सदा बाबा की छत्र छाया में रहेंगे। और बोलो सदा हैं? हाँ, इसके साथ एक और जोड़ दें कि हम सदा अमृत वेला और मुरली दोनों का आनंद लेंगे। देखो अमृत वेले के लिए दो बातें सभी याद रखेंगे, मुझे बहुत सुंदर लगती हैं ये बातें, पर अब जब बाबा की मुरली में सुना कल ही तो और अंडरलाइन हुआ। एक बात रखेंगे कि रोज अमृत वेले बाबा हमारे पास चक्कर लगाने आता है। जब योग में बैठें या उठते ही ये याद कर लें कि बाबा चक्कर लगाने आएगा। और तब हम सो गए हों योग में तो क्या करेगा माताओं की, क्या करेगा? जगाएगा, फिर जगा देता है, लेकिन सोने वालों की नींद गहरी होती है। कहते तुम पर जाओ, हम फिर सोते हैं, जगाएगा। तो एक बात याद रखेंगे, बाबा हमारे पास चक्कर लगाने आएगा, इससे बहुत चुस्ती रहेगी। दूसरी सुंदर बात कल की मुरली से, सवेरे ऐसे योग में बैठो, भीम सिंह भाई याद आ रहा है, कि सारे संसार को लाइट माइट का दान मिले, सकास मिले। ये दोनों बातें याद रखेंगे अमृत वेले के लिए। तो हम सदा, इसको भी जोड़ दें, सदा इन दोनों का हम आनंद लेंगे। और भी कुछ बताएंगे? पांचवी हो गई थी, और बोलो आठ निकाल ले। सदा और बता, बहुत प्रैक्टिकल बात। एक है पुरुषार्थ करना, वो अलग चीज है, एक है अपने को तैयार कर देना। जैसे ये था, हम खुश रहेंगे, कुछ भी हो हम खुश रहेंगे, ऐसी बताओ। हम बाप के, ये भी पुरुषार्थ है, लव में लीन रहेंगे। और बताओ सदा, हम सदा बहुत हल्के रहेंगे, हम सदा व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे हम सदा। बहने बोले, पीछे वालों को बोलना है, बोलो। इच्छा मात्रम अविद्या रहेंगे, ये सब जो झंझट है दुनिया के, इच्छाएं ये वो, इससे मुक्त रहेंगे। इनमें से आप चुन लें एक दो बात, सारी अच्छी हैं, सारी भी की जाएंगी, हमें ही करनी है, पर पुरुषार्थ में बहुत अच्छा रहता है कुछ कुछ समय के लिए हम एक दो बातों को साथ रखकर चले। अब है संपन्न और संपूर्ण बनने की उमंग, उत्साह में रहना। पहला लक्ष्य क्या रखेंगे? हम कुछ बातें निकाल लेते हैं, हमें संपन्न बनना है। संपन्न किन किन चीजों में? और संपन्न बनते बनते हम संपूर्ण बन जाते हैं। जैसे उतरे थे परम धाम से, वैसे ही संपूर्ण, फुल पावर में फुल, सभी कर्म नष्ट हो गए। तो पहली चीज जिसको ये लगन लगानी है, याद रखेंगे पहली बात, उससे भी पहली बात कहता हूँ, ये मुरलियां शुरू में बाबा की बहुत चली हैं, जब बाबा व्यक्त हुए। अगर श्रेष्ठ लगन में रहेंगे तो लगन की अगन में विघन जलकर नष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये, विघन उन्हें आ रहे हैं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की लगन में नहीं हैं। तो इधर उधर बहुत देख रहे हैं, व्यर्थ बहुत चल रहा है, संसार में समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, उनकी कोई कमी नहीं दिखाई देती। तेजी से दिनों दिन बीमारियां, बच्चों का बिगड़ना परिवारों में, मनुष्यों का शराब पीना, एकदम चरित्रहीनता की ओर चलना, ये ऐसी समस्याएं और कलयुग का घोर अंधकार, तमोप्रधानता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि ऐसा लगता है ये किसी के हाथ में नहीं रहा है, ये होना ही है। तो हमें ऐसी सकास अमृत वेले देनी है कि बहुत आत्माएं, कम से कम देव कुल की आत्माएं पुनः लौट आए, उनमें आसुरी संस्कार जागृत ना हो। देखो जब ये दिल्ली में केस हुआ तो बाहर के लोगों ने कहा कि ये छह के छह तो नर पिशाच हैं, समझ गए ना, नर पिशाच राक्षस हैं नर के रूप में, लोगों को भी लगता है ना। अब हमें अगर संपूर्णता की लगन लगानी है तो पहली लगन लगानी पड़ेगी, इस बात को ध्यान देना है सभी, अगर आप में से किसी ने पहली अव्यक्त मुरली सुनी हो, 21 जनवरी 1969 बाबा व्यक्त हुए और पहली जनवरी तब बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए ये सुंदर बात कही थी कि जो बाबा के समीप रहे हैं उन्होंने देखा होगा, महसूस किया होगा कि ब्रह्मा 8-10 मास से निरंतर योग युक्त थे। बाबा ने संख्या ही 8-10 मास बोली थी, बहुत समय से नहीं कहा था। और हम जानते हैं जो निरंतर योग की स्थिति तक पहुंची हो आत्मा, उसने कितनी लंबी साधनाएं की होंगी, कितनी लंबी यात्रा तय की होगी, त्याग तपस्या वैराग्य की। तो हम पहली लगन रखेंगे अपना योग का चार्ट, कितना 8 घंटे तक पहुंचे। देखिए इसके बिना तो संपूर्णता आएगी नहीं। अगर हम अपने पुरुषार्थ को ऐसा तेज नहीं करेंगे, अगर हम समय से पहले ऐसी लगन नहीं लगाएंगे, तो समय हमें बाध्य कर देगा योग करने के लिए। क्या करेगा समय, कैसे करेगा कि बाहर घर से कोई निकल नहीं सकेगा, खाने पानी की तंगी हो जाएगी, समय कहेगा घर में बैठो भूखे रहो योग लगाओ, विवश कर देगा मनुष्य को और कोई चारा नहीं बचेगा चित्त को चैन देने का। और जो पहले से ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ में तत्पर होंगे उनको तब योग युक्त रहना सहज होगा, वो उस समय को, उस उन परिस्थितियों को, विनाश की उस महामारी को भी सहज रूप से फेस कर सकेंगे। कल की बात याद होगी आपको, कल की मुरली फिर पढ़ लेनी चाहिए जिन्होंने लिखी हो या जिनके पास हो। प्रकृति को क्या आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है और वो उस क्रोध में सब संसार को डुबो देने वाली है, मतलब नष्ट कर देने वाली है। आप कल्पना करो जब संसार नष्ट होने लगेगा तब सबसे बड़ी परीक्षा क्या होगी, नष्टो मोहा की। इसलिए दूसरी लगन लगानी है जिनको संपन्न और संपूर्ण बनना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। पहले आएगा स्मृति स्वरूप फिर नष्टो मोहा, साथ साथ चलेंगे, नष्ट मोह नष्ट होता जाएगा, स्मृतियां क्लियर होती जाएंगी, सब कुछ नष्ट होगा। मैं एक माता की कहानी सुनाऊं, अभी फोन था मुझे 6 बजे, कहा मेरा लड़का बहुत बिगड़ गया है, अफीम खा के आता है, शराब पी के आता है, 2 बहनें हैं, दोनों को गालियां देता है, मुझे मेरे युगल को गालियां देता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मैं क्या करूं, हमारे घर में अशांति हो गई है। मैंने ऐसे ही हंसी में कहा छोड़ दो ना लड़के को, मैं देखना चाहता था ये माता का रिएक्शन क्या है। कहा कैसे छोड़ दूं, अकेला ही है। अब देखो दुविधा देखो आप, एक बच्चा नेचुरल माँ का अति मोह है, ज्ञान में 15 साल से है पर मोह तो छूटता नहीं जब तक साधनाएं न की जाए, अकेला लड़का और वही कष्ट दे रहा है पूरे परिवार को, कहा बाप भी बीमार रहने लगा है उसका देख देख के, बहनों को तो गाली देता है, बुरी बुरी बातें करता है, मैं उस माता की हालत देख के रोने लगी। वो क्या करूं मैं। मैंने उसको विधि बताई, थोड़ी सी दो विधियां बताई। लेकिन मैं सोच रहा था कि जिस दिन मोह के कड़े पेपर आएंगे उस दिन इस संसार का हाल क्या होगा। मानसिक रूप से लोग बुरा हाल हो जाएगा, चैन ही नहीं मिलेगी किसी को भी, नींद नहीं कर पाएंगे लोग। ऐसे में हमारा पावरफुल योग हमसे फैलने वाली सकाश सब आत्माओं को चैन देगी। हमें चैन देनी है सबको, तो दूसरी लगन लगाएंगे सभी स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। तीसरी लगन बोलो, कौन बोलेगा? आज की मुरली में भी था वो बहुत सुंदर शब्द, और सोचो ये भी ठीक है, मैंपन और मेरेपन से संपूर्ण मुक्त होने की स्थिति बहुत सूक्ष्म है। मैंपन और मेरापन जितना सूक्ष्म है उतना और कुछ कोई नहीं सूक्ष्म। मेरा ही लगाव का कारण है, मेरा ही मोह का कारण है, मेरे के कारण ये आसक्तियां हैं, मेरा ही मन उसको परेशान कर रहा है, इसलिए इतने लंबा काल सब कुछ तेरा, कहने से काम नहीं चलेगा। कह तो हर एक देता है, बाबा तेरा में, 2013 में सब कुछ तेरा। वो सोचते हैं पैसा कर दो तेरा, पैसा तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। है क्या कुछ पैसा उसके लिए? कुछ नहीं, तो कागज है उसके लिए। जो संसार में हीरो की बरसात करा कर जाता है हीरे और सोने की, उसके लिए कागज के नोट क्या है? जो हम सोचते हैं ये सब कुछ तेरा कर दें, बहुत सूक्ष्म गति है मैं और मेरा। चौथी बात, संपूर्ण पवित्रता, इसकी लगन लगानी पड़ेगी। और संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत गहरी है, कोई कोई तो इसमें बहुत कच्चे हैं। आज की मुरली में आपको याद दिला रहा था, पवित्रता तमो प्रधान, तमो सतो और सतो प्रधान, तुम्हारी पवित्रता सतो प्रधान। बाबा का महावाक्य याद दिला दूं आपको, चेक कर लेंगे सब अपने को। जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, तब समझ लेना तुम सतो तक पहुंच गए, त्रेता तक पहुंच गए। क्रोध की अग्नि शांत हो जाए, अहंकार लोप हो जाए, ईर्ष्या द्वेष नष्ट हो जाए, रोग और चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाए, मन निर्मल हो जाए, वाणी सुखदायी हो जाए, यह संपूर्ण पवित्रता सतो प्रधान पवित्रता, जिसमें हमारा देह भी न हमें आकर्षित करेगा न अन्य किसी को, न अन्य का देह हमें आकर्षित करेगा न हमारा अपना देह हमें खींचेगी। देह के भान से, उसके आकर्षण से, उसके प्रभाव से संपूर्ण मुक्त, ये सतो प्रधान पवित्रता। इसके बिना संपन्नता और संपूर्णता नहीं आएगी। और आगे चले पांचवी बात, बोलो, हमें संपन्न और संपूर्णता की लगन लगानी है, तो व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रखना है। हम सबके पास एक कमी चल रही है आजकल, जिस पर ध्यान देना है सबको, वो कमी हमें पूरी करनी पड़ेगी, और वो है वैराग्य की कमी। वैराग्य के बिना कोई भी महान योगी नहीं बन सकता, उसमें भी व्यर्थ से वैराग्य, आसक्तियों से वैराग, संसार की इच्छाओं तृष्णाओं से वैराग। इसका अर्थ ये नहीं घर छोड़ के बाहर चले जाएंगे, इसका अर्थ ये भी नहीं कि माताएं बच्चों की पालना नहीं करेंगी, इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप बिजनेस और अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, लेकिन व्यर्थ से वैराग्य, घर चलने की तैयारी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इस चीज को देख चुके हैं तब जब बाबा व्यक्त हुए थे, कैसी यज्ञ में वैराग्य की लहर थी, उसका वर्णन तो करना असंभव है, वो अनुभवों की चीज है। कि हर आत्मा सोच रही थी हमें बाबा की तरह जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनना है, हमें कहीं भी लिप्त नहीं होना है। बाबा उदाहरण देते थे, हलवा जब बन जाता है तो क्या करता है, किनारे छोड़ देता है। अगर चिपका रहे, देखो जो हलवा बनाना जानते हैं, माताएं तो सब जानती है ना, पानी ज्यादा पड़ जाए चिपका रहेगा, होगा ना, हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल घी पर आ जाता है, किनारे छोड़ देता है, कढ़ाई से चिपकता नहीं। ऐसे ही हम भी सभी आसक्तियां छोड़ चुके हों, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया हो, कर्म इंद्रियों का रस अपनी ओर न खींच रहा हो, ये है हमारी संपूर्ण स्थिति। कर्म इंद्रियों के रस में अगर हम हैं तो संपूर्णता से दूर हैं। खान पान अगर हमें आकर्षित कर रहा है, समोसे के बिना अगर भोजन अच्छा नहीं लगता है, लाल मिर्ची न मिली तो भूखे रह जाते हैं, तो ये जीव की आसक्ति योगयुक्त होने में कठिनाई पैदा कराएगी, याद आता रहेगा वो। और आगे चले, इच्छा और तृष्णाओं का त्याग। जिसको संपूर्ण बनना है उसे संसार से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसलिए संपूर्ण बनने में सबसे आगे होंगी समर्पित आत्माएं। सभी ध्यान दें समर्पित वाले, क्योंकि वो जल्दी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त हो सकते हैं। गृहस्थी भी बनेंगे, लेकिन वो जो इच्छाओं तृष्णाओं की गुलामी को छोड़ दें। बहुत इच्छाएं हैं संसार में, बाजार में इतनी चीजें दिखती हैं कि सब ले लें, घर को स्टोर रूम बना दें। साड़ियां खरीदती हैं माताएं, अब आप तो सफेद पहनने लगी होंगी, नहीं तो माताओं के लिए साड़ियां ही रंग मैच करना, फलानी ने अच्छी पहनी है मेरे पास इससे अच्छी हो, होता है या नहीं, आपको नहीं होता होगा। अब संसार में ये बहुत बड़ी माया है, दादी बहुत हंसाती थी कि हमें न रंग चुनना है, कुछ भी तो नहीं, सफेद साड़ी आ गई बस, उसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी होती होगी। तृष्णा और इच्छाओं से परे, बहुत सुंदर ये धारणा है, आजकल बाबा की मुरली में आ रहा है ये शब्द रोज, मर जीवा मर जीवा, तो मर गए हो, जीते जी मर गए हो, देश न्यारा तुम्हें होना है, तो ऐसी फीलिंग हो जाए संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए। दो बातें हो गई ना, इस संसार में हमें कुछ नहीं चाहिए, इस संसार से भी हमें कुछ नहीं चाहिए। कोई लोग केवल मान की तृष्णा में जीते हैं, बहुत परेशान होते हैं, सेवा के फील्ड में रहते हैं, बाहर सेंटर्स पे भाई बहने, किसी को ज्यादा मान दे दिया बहन जी ने तो परेशान, बहन जी से नाराज, दुखी, सेवाओं का सुख खत्म। ये बहुत छोटी स्थितियां हैं, बहुत छोटी। निष्काम भाव से कर्म करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और आगे कुछ याद आता है किसी को संपूर्णता के लिए है? हाँ, ये सब समर्पणता में आ गए। हाँ, ये सब साधनाएं योग में, आत्मविमानी, स्वमान, ये सब स्थितियां जो योग साधना में हमें करनी है, उसकी लगन। साक्षी दृष्टा, बहुत अच्छी बात है, आप सेंगे ये आठ बातें हो गई, साक्षी दृष्टा और सबके लिए शुभ भावनाएं। योग की तपस्या में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास भी हो, उससे हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ती है, देहों का आकर्षण समाप्त होने लगता है और उससे हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से चलते हैं। तो बाबा ने हम सबको एक बहुत अच्छा काम दे दिया, लहर फैलाओ। पहले स्वयं में उमंग उत्साह आ जाए, फिर सारे ब्राह्मण परिवार में ये हम लहर फैला दें। सब ये काम करेंगे जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं हमारे पास यज्ञ में, उन्हें सबको ये काम करना है कि संपूर्ण बनने की लहर फैलाएंगे। हम भी उस पुरुषार्थ में आगे बढ़ें, व्यर्थ में हमारी कोई रुचि न हो, लगन हो जाए। उसी के लिए बाबा ने कहा लक्ष्य रखेंगे तो लक्षण तेजी से आते रहेंगे, देर नहीं लगेगी। लेकिन हमें इस ऐसी सुंदर यात्रा पर चलना है जो लंबी यात्रा है, संपूर्णता की यात्रा बहुत जल्दी नहीं आती। हम जब छोटे थे यज्ञ में समर्पित होके आए तो एक संकल्प बार बार मन को प्रेरणा देता था, उमंग बढ़ाता था। तब बाबा की कहानियां बहुत सुनाई जाती थी, रोज रात्रि क्लास माना बाबा की कहानियां। बहुत सारी दादियां यहाँ रहती थी, ब्रजिंद्रा दादी बहुत रहती थी, जानकी दादी बहुत यहाँ रहती थी, चार पांच दादियां बहुत रोज रात को बाबा की कहानी सुनाते थे। तो हमें क्या प्रेरणा मिलती थी कि जिस महान आत्मा ने प्रारंभ से ही आत्मा होने का बहुत अभ्यास किया, जिस जैसा त्याग चारों युगों में किसी का नहीं हो सकता, ठीक बात है ना, उस जैसा वैराग्य, उस जैसा शक्तिशाली आत्मा, माया को चैलेंज करने वाली आत्मा, उसको भी संपूर्ण बनने में 33 साल लगे, जिसका एक भी दिन बिना साधनाओं के नहीं बीता, अलबेलेपन में नहीं बीता, जो एक भी दिन अमृत वेले सोया नहीं होगा। ब्रह्मा ही सो जाए तो सारी सृष्टि सो जाएगी, जो सोया ही नहीं अमृत वेले एक भी दिन, उसको भी 33 साल लगे। तो हमें भी तेज पुरुषार्थ करना चाहिए, ये नहीं सोचना है तो हम तो बनेंगे ही नहीं, हमारे पास तो 33 साल नहीं है, ये नहीं सोचना होता। सोचना ये है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करके जल्दी से जल्दी इस अवस्था को पाना है। और बाबा से हम यही सीखते हैं हमारी साधनाओं में कि हम बहुत अच्छा भविष्य का नशा रखें, जो आज भी मुरली में था, ये देह तुम्हें याद न आए, सतयुगी देह याद आती रहे। सतयुग का स्वरूप, देह तो हम क्या याद करेंगे, सतयुग का स्वरूप हमें याद आता रहे। अब है संपन्नता बात, दो शब्द बाबा बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा ना। संपन्न किस किस चीज में बनना है, हर्षा बहन बताएगी। पहले बोलो, छोटी सी बात है, हमें सब खजानों में संपन्न बनना, गुणों में संपन्न। दूसरा शक्तियों में संपन्न, अब भाई बताएंगे, बोलो, ठहरो, ज्ञान में संपन्न। पहली संपन्नता है वास्तव में ज्ञान की है, ज्ञान की संपन्नता और चीजों में संपन्न होने में सबसे ज्यादा मदद करती है। ज्ञान जिसके पास जितना फुल है उतना ही वो आत्मा सर्व खजानों को धारण करती जाएगी। और ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, रोज की मुरलियों से। ये जो मुरलियां बाबा ने हमें दी हैं, ये वंडरफुल खजाना, हमें इसका महत्व हो, केवल मुरली पढ़ लें ये नहीं, मुरली का ज्ञान सूक्ष्म रूप से हमारी बुद्धि में समाता चले। केवल सुन लें, कई सोचते हैं 5 बार रोज मुरली पढ़ लो, वो भी ठीक है, लेकिन मुरली को 5 बार पढ़ने की बजाय एक ही बार पढ़ें, सुने और क्या करें, उस पर चिंतन होने लगे। 5 बार पढ़ ली और शाम को सोचा क्या थी मुरली, तो कुछ भी याद नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बाबा ये चाहता है मुरली का स्वरूप हम बनते जाएं, जो मुरलियों में रोज सुंदर सुंदर बात आती, आज भी थी ना, शांत और मीठे बच्चे, कल थी शायद, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मुरलियों में आती हैं, उन पर हम ध्यान दें। ऐसे नहीं बाबा से हमने हजारों बार सुन लिया, बच्चे किसी को दुख न देना, और हम वही काम कर रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, ये मुझे दुख दे रहे हैं। जो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं उन्हें ये पता नहीं चलता कि हम दे रहे हैं, वो सदा शिकायत करेंगे ये मुझे तंग कर रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना। और खजाना बताएंगे पीछे वाली माताएं, केवल सुन रही हैं। बोलो, खजाने जिनसे हमें भरपूर होना है। हाँ, और आगे चलो, समय का खजाना। हम सफल करते चले इसे तो समय हमारा फ्रेंड बन जाएगा। चारों युगों में समय हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। और आगे चलो, संकल्पों का खजाना, दुआओं का खजाना। हम ऐसे कर्म करें सबकी दुआएं, सबकी शुभ भावनाएं हमारे साथ हों। एक दो तीन दिन से हम मुरलियों में सुन रहे हैं और बाबा ने कल भी बोला, जब सबने हाथ उठाया बाबा खुश हो गए और क्या कहा, वाह, बोलो वाह बच्चे वाह, भगवान दुआएं देता है। हमारी उमंग देखकर भी प्रसन्न होता है, उसको पता है इन सबसे होगा नहीं, ऐसे हाथ उठा रहे हैं, फिर भी खुश होता है उमंगे देखकर। और वहां तो सब ऐसा हाथ उठा देते हैं कि आश्चर्य लगता है। बाबा ने पीछे पूछा, सब संतुष्ट मनी हो, सब ने हाथ ऊपर कर दिया, हमें भले ही बाहर जाते ही लड़ाई शुरू कर दें लेकिन वहां तो संतुष्ट मनी है। तो बाबा प्रसन्न होता है अपने बच्चों की उमंग देखकर। दुआएं लेते चले हम, मनुष्यों की भी दुआएं और सबसे बड़ी बाबा की दुआएं, भगवान की दुआएं। देखिए अब मुस्लिम्स में देखो तो वो सदा यही कहेंगे, खुदा से दुआ करो, दुआएं मांगो। और यहाँ मांगने की जरूरत नहीं, हम कर्म ऐसे कर रहे हैं, हम यज्ञ सेवा ऐसी कर रहे हैं, हम उसके कार्यों में ऐसी मदद कर रहे हैं कि उसकी प्यार भरी दृष्टि, उसकी दुआओं भरी दृष्टि हम पर आने लगती है। और ये सबसे बड़ी उसकी मदद होती है। तो हम ये खजाने जमा करेंगे। और भी कुछ खजाना किसी को याद आ रहा है? पुण्य कर्मों का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। मनुष्य को समस्याओं में और विनाश काल में पुण्य बहुत साथ देंगे। जिन्होंने बाबा के यज्ञ में बहुत सेवा की, आप सब सेवा में आए हैं ना, भले आप गरीब घर से हैं, आप यज्ञ में धन बहुत नहीं लगाते लेकिन सच्चे मन से उसके कार्य में मदद कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा विनाश काल में उसकी मदद मिल रही है। केवल धन से मदद की बात नहीं, जिसने इस परिवार को, इस कार्य को अपना मान लिया, कैसे, सबको अनुभव है, आपके घर में कोई काम चल रहा हो, माताओं के घर में बच्चे की शादी हो रही हो, कैसे अपनेपन से काम होता है, करते हैं ना, वैसे ये बाबा का कार्य, ये उसका यज्ञ हमारा है, बिल्कुल इसमें अपनापन हो जाए। ये नहीं 10 लाइट जली हुई है और हम कहें ये तो यज्ञ की जल रही है ना, हमारी थोड़ा ही बिजली जा रही है, हमें थोड़ा ही बिल चुकाना है, ये नहीं, ये हमारा है। मैंने एक उदाहरण दिया, ये हमारा है, अपनापन हो जाए इस यज्ञ से, इसकी लाभ हानि हमारी है, इसमें कमी पेशी हमारी है, इसकी सफलता हमारी है, ऐसा अपनापन हो जाए। पुण्य बहुत बड़ी चीज है और सबसे बड़ा पुण्य है इस समय भगवान को साथ देना, है जो सदा हमें साथ देता आया है, जिसको किसी के साथ की जरूरत नहीं, वो अब हमारा साथ चाहता है। देखिए वो खुद बोल देता है, मैं अकेला थोड़ा ही कुछ करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसे हमारे द्वारा करानी है। तो वो हमारा महत्व भी हमें देता है, हमें सम्मान भी देता है, और ये पुण्य कर्म करने का बल दे रहा, अवसर दे रहा है। मैं सोचा करता था जब छोटे यज्ञ में आए, क्या हमारा भाग्य भी कितना सुंदर है, भगवान ने अपने घर में स्थान दिया, आप भी सोचो, खाना भी अपना खिला रहा है, कपड़े भी पहना रहा है, और क्या कर रहा है मेजर साहब, भाग्य तुम बना लो जितना चाहिए, भाग्य बनाने का अवसर भी खुद दे रहा है। लो यज्ञ रच दिया तुम्हारे लिए, करो पुण्य। कितनी बड़ी बात हो गई। तो इस अवसर का हम सुंदर लाभ उठाएंगे, ऐसे खजानों से भी हम संपन्न बनते चलें। हमें ऐसा फील न हो कि शांति में हम संपन्न नहीं हैं, हमें ऐसा फील न हो कि खुशी की सुखों की कमी पड़ गई है, हमें ऐसा न लगे कि कोई परिस्थिति आ गई तो शक्तियां कम हैं। संपन्नता भी बहुत बड़ी चीज है। गुह्यता को इसकी समझते हुए कि कितने बड़ी समस्या आ जाए, कोई कितने बड़ी माया आ जाए, पर हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं, भरपूर हैं, ऐसी फीलिंग कि कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं करती। और फाइनली फूल होने की निशानी है, घड़ा पानी से फूल है तो हिलेगा नहीं। फूल माना, संपन्न माना, हम हिलेंगे नहीं। तो सभी ध्यान देंगे और लगन रोज रिवाइज करेंगे कि बाबा हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, ये उमंग उत्साह बढ़ाओ। हम ऐसे नहीं सोचें, कई लोग ये भी सोचते हैं ये तो बाबा सालों से कहते ही आ रहे हैं, क्या है, ठीक है। ये नहीं, ये सोच लिया माना ईश्वर ये सहयोग से वंचित हो गए। बाबा ने कहा हमें करना ही है, आज भी यज्ञ में वही आगे निकले जो शुरू से ये करते थे, जो बाबा ने कहा मुझे करना है। तो सब बहुत लगन बढ़ाएंगे, सदा को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।